नमस्कार, खुशामदीद, स्वागत। आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका रेडियो फ्री नैशविल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं, उनको कमर्शियल फिल्म्स के नज़रिए से देखा जाए तो वो कोई सुपरस्टार नहीं रहे। उन्होंने नंबर ऑफ फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा नहीं की, पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही चोटी के निर्देशकों के साथ की। कई बेहतरीन फिल्मों में अपने सादगी भरे अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। फिल्मों से लेकर थिएटर तक, टीवी और रेडियो तक, उनकी प्रतिभा किसी भी एक मंच तक सीमित नहीं थी, चाहे वो स्टेज हो या फिल्म्स या टीवी। भारतीय सिनेमा और कला के पर्दे पर उन्हें एक फाइन एक्टर के रूप में जाना जाता था। और नॉट जस्ट दैट, उनको उनकी शख्सियत की सादगी और सौम्यता के लिए भी जाना जाता था। आज किस कलाकार की हम बात कर रहे हैं, चलिए मैं आपको एक गाना सुनवाती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो गाना सुनते ही उस अभिनेता की छवि आंखों के सामने आ जाएगी। फिर भी अगर आपको याद नहीं आता तो मिलती हूँ आपको गाने के बाद और फिर हम बातें करेंगे हमारे आज के कलाकार के बारे में और आपको सुनवाऊंगी बहुत ही मीठे से गाने उनकी फिल्मों के। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। तो कैसा लगा गाना? आई एम श्योर कि आप में से कईयों ने इस गाने को न जाने कितनी बार गुनगुनाया होगा। क्या आपको इस गाने को सुनने के बाद आइडिया लगा कि हम आज किसकी बात करने वाले हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात करने वाले हैं फारुख शेख की, जिनका बर्थडे अभी 25 मार्च को था। पहले मैं इस गाने के बारे में बता दूँ, ये था 1982 की फिल्म साथ साथ से। इसमें बोल लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने, इसमें संगीत था कुलदीप सिंह का और आवाज़ें मखमली मुलायम आवाज़ें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की। पर्दे पर फारुख शेख के साथ दीप्ति नवल। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं फारुख साहब की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फारुख साहब का जन्म हुआ 25 मार्च 1948 को गुजरात के अमरौली नाम के एक छोटे से गांव में, जो कि बड़ौदरा से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। उनके फादर का नाम था मुस्तफ़ा शेख, जो कि एक लॉयर थे। उनकी मदर का नाम था फरीदा शेख। और ये लोग पाँच भाई बहन थे, जिसमें फारुख साहब सबसे बड़े थे। उनके पिताजी जो लॉयर थे वो मुंबई में प्रैक्टिस करते थे और ये लोग मुंबई के नागपाड़ा एरिया में रहते थे शुरुआत के दिनों में। इन्होंने अपनी शुरुआती जो एजुकेशन थी वो मुंबई के सेंट मेरी स्कूल में करी। उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी सेंट जेवियर्स कॉलेज में। अब जैसे कि घरों में होता है कि हमारे पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में होते हैं, हमें हम पर उसका थोड़ा गहरा प्रभाव होता है और हम उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो सेम इनके साथ भी हुआ कि इनके फादर लॉयर थे, तो इन्होंने भी कहा कि मैं उसी ट्रेडिशन को आगे ले जाता हूँ और लॉयर बनता हूँ, जिसके लिए इन्होंने मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन भी लिया। फिर फारुख साहब लॉयर बनते बनते कैसे बन गए बॉलीवुड के अभिनेता, ये बात आपको बताती हूँ, पर पहले सुनवा देती हूँ ये गाना। चलिए। आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। काम की तलाश में अपने घरों से दूर जब बड़ी माया नगरी में हम पहुँचते हैं और हमारे सपनों को ठेस लगती है, तो क्या बेबसी होती है इस एहसास को शहरयार ने बहुत ही खूबसूरती से अपने अल्फाजों में पिरोया है। ये गज़ल जो अभी हमने सुनी ये थी 1978 की फिल्म गमन से। इसको आवाज़ दी थी सुरेश वाडकर जी ने। इसमें संगीत था जयदेव का, जिनको कि इस फिल्म के लिए मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड। ये फिल्म गमन मुजफ्फर अली की डायरेक्टर डेब्यू थी, जिन्होंने आगे चलकर उमराव जान बनाई थी। इस फिल्म में फारुक शेख ने मुख्य भूमिका निभाई है एज अ टैक्सी ड्राइवर, जो कि अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बीवी को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में छोड़कर मुंबई आ गए होते हैं जीविका कमाने के लिए। कैसे यहाँ जो इनके सपने हैं वो टूटते हैं, कैसे वो घर जाने के लिए भी पैसा जोड़ नहीं पाते हैं और क्या बेबसी महसूस करते हैं, इन सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स एहसासों को बहुत खूबसूरती से निभाया है फारुक शेख ने। आज देसी जायका में हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता फारुक शेख के बारे में। इस गाने पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि फारुक शेख ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की और फिर लॉ पढ़ने के लिए वो सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ में उन्होंने एडमिशन लिया, क्योंकि उनके फादर लॉयर थे तो वो भी लॉयर बनना चाहते थे। लेकिन कैसे हुआ कि वो लॉयर बनते बनते फिल्मी दुनिया में आए, अब इसका जिक्र। तो हुआ यूं कि जब फारुक साहब सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इनका रुझान एक्टिंग की तरफ हुआ और इन्होंने इप्टा ज्वाइन की, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। उस समय इनकी बैचमेट थी मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी, जिनके साथ भी इन्होंने कई बार मंच पर काम किया। उस समय उन्होंने इप्टा में मशहूर निर्देशक सागर सरहदी जी के साथ भी काम किया, जिन्होंने आगे चलकर फिल्म बाजार बनाई और फारुक शेख जी ने उसमें अभिनय किया। जब ये सेंट जेवियर्स के बाद में लॉ कॉलेज में पढ़ने लगे तो ये करीब फर्स्ट ईयर की बात है कि एम एस सत्यू साहब, जिन्होंने फारुक साहब का काम इप्टा में देखा था, वो एक फिल्म बना रहे थे गर्म हवा, जो कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर थी और उनके पास बजट बहुत कम था। उन्हें कुछ ऐसे कलाकार चाहिए थे जो काम अच्छा करे और पैसे ज़्यादा ना ले। तो उन्होंने फारुक साहब को अप्रोच किया और फारुक साहब ने हाँ बोली और इस तरह से शुरू हुआ फारुक साहब का फिल्मी करियर। यूं तो फिल्म गर्म हवा में फारुक साहब का जो किरदार था वो साइड कैरेक्टर था, वो मेन जो लीड रोल बलराज साहनी थे उनके सबसे छोटे बेटे बने थे। लेकिन ये फिल्म काफ़ी सराही गई। ये फिल्म भारत की ऑफिशियल एंट्री थी एकेडमी अवार्ड्स बेस्ट फिल्म फॉरेन फिल्म कैटेगरी में कैन फिल्म फेस्टिवल में। इस फिल्म को मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड। इस फिल्म ने जीते थे 3 फिल्म फेयर अवार्ड। तो कहने का मतलब है कि इसमें सभी कलाकारों की जो अभिनय था उसको सराहा गया था और नोटिस किया गया था। ये फिल्म इसमत चुगताई जी की एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कभी पब्लिश नहीं हुई, उसका फिल्मी रूपांतरण था और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी शबाना आजमी जी के फादर कैफी आजमी ने। और बस इस तरह आना हुआ फारुक शेख साहब का फिल्मी दुनिया में। फारुक शेख साहब कहते हैं कि इस फिल्म के लिए इन्हें 750 रुपये देने का वायदा किया था एम एस सत्यू साहब ने, जो कि इन्हें अगले 7 साल के दौरान धीरे धीरे करके मिले। लेकिन इस बात का फारुक साहब कहते हैं कि उन्हें कोई गम नहीं, ये फिल्म बहुत अच्छी थी, काम करने में बहुत मज़ा आया और इस फिल्म के करने के बाद ही कई और बड़े डायरेक्टर्स ने इनको नोटिस किया और इनकी फिल्मी दुनिया का सफ़र चल पड़ा। तो ये तो किस्सा रहा फारुक साहब के फिल्मी दुनिया में आने का। और जहाँ तक बात रही वकील बनने की, तो उसकी पढ़ाई के दौरान ही फारुक साहब को ये लगने लगा था कि ये पेशा उनके लिए कुछ वेल सूटेड नहीं है, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था और जिस तरह से वकील के पेशे में बातें करनी पड़ती हैं, काम निकलवाने पड़ते हैं, वो उनसे ना हो पाएगा। तो उन्होंने फिर अपनी एक्टिंग पे ही तवज्जो देनी शुरू कर दी। अब इसके पहले कि हम आपको उनके फिल्मी सफ़र की दास्तान आगे सुनाएं, सुन लेते हैं ये गाना। चलिए नूरी नूरी अभी जो गीत हमने सुना ये था 1979 की फिल्म नूरी से। इस फिल्म में फारूक साहब ने रोमांटिक भूमिका निभाई है। यश चोपड़ा जी की फिल्म थी, इसमें बोल लिखे थे जावेद अख्तर के वालिद साहब जानिसार अख्तर ने, इसमें संगीत था खयाम का, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, पर्दे पर फारूक साहब के साथ पूनम ढिल्लो। और ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस थी, सुपरहिट थी और इसमें फारूक साहब की भूमिका को काफ़ी सराहा गया था। अब वापस चलते हैं और इस गाने पे जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे इनको गर्म हवा मिली MS सत्यु साहब की, और उस फिल्म में भी इनकी भूमिका को काफ़ी सराहा गया था। MS सत्यु की उस फिल्म में इनका अभिनय देखने के बाद यू नो हु कॉन्टैक्टेड हिम फॉर हिज मूवी, दी सत्यजीत रे। डायरेक्टर सत्यजीत रे ने फारूक साहब को कांटेक्ट किया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें कि वो फारूक साहब को कास्ट करना चाहते हैं। फारूक साहब बताते हैं कि उस समय वो कनाडा में थे, तो उन्होंने फ़ोन पे उनसे जब बातचीत हुई तो बोला कि मैं तो कनाडा में हूँ और ऑलमोस्ट एक महीने बाद भारत वापस आऊँगा, और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका इंतज़ार करूँगा। एंड सत्यजीत रे waited for Farooq Sahab to come back to India and then casted him in his movie. वो फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी। यूं तो इस फिल्म में शायद फारूक साहब का रोल कोई बहुत बड़ा या लंबा नहीं था, लेकिन he said he felt so fortunate to work with सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे में थोड़ा इंग्लिश डिसिप्लिन जैसा था, वो बिल्कुल टाइम पर आना और उस तरह से काम करते थे वो सीखा। सत्यजीत रे के बारे में फारूक साहब कहते हैं वो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड थे, फ्रॉम कैमरा टू लाइट्स टू एक्टिंग टू डायरेक्टिंग टू राइटिंग, हर चीज़ में उनका दखल था जिससे फिल्म में एक अलग ही बात थी। सो बेसिकली बीइंग इन दिस मूवी ही सेड ही लर्न अ लॉट एंड फील्ड सो फॉर्चुनेट दैट ही वर्क ही गेट टू वर्क विद सत्यजीत रे। फारूक शेख ये भी बताते हैं कि इस फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुजफ्फर अली कॉन्टैक्टेड एंड कास्टेड हिम इन गमन, एंड जिसका भी मैंने आपको एक गाना सुनवाया था, और जिन्होंने बाद में उमराव जान में एक बहुत अच्छा रोल फारूक को दिया था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं उमराव जान का एक गाना और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें।
उफ़ उफ़ क्या गजल है, मैं जितनी बार भी सुनूँ ना उतना कम है। इसका एक एक शेर मुझे बेहद पसंद है और उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जैसे जितना प्यार मुझे इस गज़ल से है। ये थी 1982 की फिल्म उमराव जान से, इसमें बोल थे शहरयार के, आवाज़ तलत अज़ीज़ की, पर्दे पर इसे फिल्माया गया था फारूक शेख और रेखा पर। यूँ तो उमराव जान फिल्म ही बनी थी रेखा के किरदार के इर्द गिर्द, और फारूक शेख साहब ने इसमें नवाब साहब का जो किरदार निभाया है उसके साथ जो ये रेखा का किरदार है वो मोहब्बत में होता है, और इस फिल्म में फारूक बहुत ही अच्छे लगे। मतलब वो जो जब अपनी नवाबी टोपी पहनकर वो शॉल ओढ़ कर वो पतली पतली मूछों के साथ, ओ माय गॉड ही लुक्स सो हैंडसम, बिल्कुल नवाबी। तो ये जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये मुजफ्फर अली जी की फिल्म थी जिन्होंने पहले गमन बनाई थी और फिर बाद में फारूक साहब को इसमें कास्ट किया था उमराव जान में। अब चलिए थोड़ी आपको मज़े की बातें भी बता देते हैं फारूक साहब के बारे में। यूं तो फारूक साहब की पर्सनालिटी को देख के लगता था कि वो बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर थे और दूसरों की टांग खिंचाई करने में उनको बड़ा मज़ा आता था। एक इंटरव्यू में दीप्ति नवल जी ने भी कहा है और शबाना आजमी जी ने भी कहा है कि वो उनको सेट्स पे बहुत इरिटेट करते थे, लेकिन ही वॉज स्वीट। एक और बात जो फारूक साहब के लिए कही जाती है कि वो उनको किताबों का बहुत शौक था। वो अक्सर सेट्स पर भी हाथ में किताब लिए दिखते थे और वाकई उन्हें पढ़ने का काफी शौक था। इसी तरह की कुछ और मजेदार बातें जो फारूक साहब के बारे में शायद आपको नहीं पता होंगी, उनके धीर गंभीर व्यक्तित्व को देखते हुए वो बताऊंगी। चलिए पहले सुन लेते हैं ये एक गाना। अभी जो ये बेहतरीन गजल आपने सुनी, ये थी 1982 के फिल्म बाजार से। इसके बोल थे मखदूम के, संगीत खयाम का, आवाज लता जी और तलत अजीज की, पर्दे पर फारूक साहब के साथ सुप्रिया पाठक। ये फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस थी। थोड़ी हेवी सब्जेक्ट था, बट नंदलेस फारूक साहब का अभिनय और बाकी सब का, इसमें स्मिता पाटिल थी, सुप्रिया पाठक थी, सभी का अभिनय बहुत अच्छा था। और एंड वंस अगेन गाने और इस फिल्म का संगीत बहुत बहुत ही अच्छा था। तो आज हमारे देसी जायका में हम बातें कर रहे हैं बॉलीवुड के अभिनेता फारूक शेख की, जो कि सुपरस्टार सुपरस्टार की श्रेणी में तो नहीं गिने जाते। खुद फारूक साहब के शब्दों में वो कहते हैं कि मुझे किसी ने खून से कोई लव लेटर नहीं लिखा और मेरे पीछे कोई फैन ऐसे पागल नहीं हुए, या मुझे देखकर लोग ऐसे पूरा रास्ते पे भीड़ नहीं रुक जाती थी। बट ही सेड ही काइंड ऑफ लाइक दैट फ्रीडम कि वो मूव अराउंड कर सकते हैं, उनको इतना परेशानी नहीं होती। लेकिन हाँ, कभी कभी वो ये भी कहते थे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने पोटेंशियल का पूरा 100% नहीं यूज़ किया और कुछ और भी कर सकते थे। खैर, जो अभी मैं गाने पे जाने से पहले फारूक साहब की कुछ बातें बता रही थी, जैसे उनको किताबें पढ़ना पसंद था, लोगों की टांग खींचना पसंद था, इसी तरह से शवाना जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ही लव्ड हॉर्स राइडिंग और बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे। उसी तरह से उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। कहा जाता है कि फारूक स्कूल के दिनों से ही ना केवल क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन दिनों भारत के विख्यात टेस्ट क्रिकेटर वीनू माकिन सेंट मेरी स्कूल के दो जो सबसे अच्छे क्रिकेटर्स होते थे, उन्हें हर साल कोचिंग देते थे। एंड गेस व्हाट, हर बार उनमें से एक फारूक हुआ करते थे। जब वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने गए तो उनका खेल और निखरा, और सुनील गावस्कर जी को का जो शुमार है वो फारूक के अच्छे दोस्तों में होता था। तो ये थी फारूक साहब की शख्सियत से जुड़ी कुछ बातें, उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू जो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। अब सुनवाते हैं आपको एक और गीत और फिर बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। Another masterpiece। ये गाना वैसे तो फारूक साहब पे नहीं फिल्माया गया है, लेकिन फारूक साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये गाना इस फिल्म का उनका सबसे फेवरेट सॉन्ग था। ये था 1981 की फिल्म चश्मे बद्दूर से। इसमें बोल लिखे थे इंदु जैन ने, संगीत था राज कमल का और आवाज़ें थी यशुदास और हेमंती शुक्ला की। पर्दे पर इसे फिल्माया गया था दीप्ति नवल जी पर। तो इस फिल्म के पहले तक फारूक साहब ने जो काम किए थे उसमें काफ़ी गंभीर रोल थे, जैसे गर्म हवा, गमन, बाजार, और फिर नूरी में इन्होंने थोड़ा सा रोमांटिक रोल किया था. लेकिन चश्मे बद्दूर वो फिल्म थी जब ही ट्राइड अ लिटिल बिट कॉमेडी एंड वो ही कन्विंस्ड ऑल. सो जो चश्मे बद्दूर थी, इट्स काइंड ऑफ कल्ट मूवी. दीप्ति नवल जी कहती हैं कि अगर आज भी वो किसी चैनल पे चल रही हो तो इट्स हार्ड टू उसे बदल कर आगे निकल जाना. चश्मे बद्दूर से जो दीप्ति नवल और फारूक साहब की जोड़ी बनी, तो फिर दे वेंट ऑन डूइंग 7-8 मोर फिल्म्स टुगेदर. रंग बिरंगी, साथ साथ, किसी से ना कहना, कथा. कथा एक्चुअली अगेन सई परांजपे मूवी थी, और कहा जाता है, फारूक साहब खुद ही बताते हैं कि कथा फिल्म बनाते समय सई परांजपे ने इनसे पूछा कि देर आर टू लीडिंग रोल्स मेल कैरेक्टर्स, विच वन वुड यू लाइक टू प्ले. उसमें से एक बहुत सीधा सीधा इंसान है और दूसरा थोड़ा ट्विस्टेड है, एंड आप कौन सा करना चाहेंगे? तो फारूक साहब ने कहा कि अभी तो मैंने चश्मे बद्दूर में एकदम गुडी गुडी वाला रोल किया है, आई वॉन्ट टू डू द ट्विस्टेड वन. एंड सई परांजपे ने कहा कि एक्चुअली वो भी यही चाहती थी, पर फारूक साहब के मुँह से सुनना चाहती थी. एंड दैट शोज दैट हाउ ही जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़. वो कभी भी किसी एक्टिंग स्कूल वगैरह में नहीं गए थे, लेकिन शायद थिएटर करने की वजह से हो सकता है. ही वॉज सो अडेप्टबल टू डिफरेंट और कीन टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स, ऑफकोर्स विद इन हिज कम्फर्ट जोन. और उस फिल्म में शायद अनदर लीड रोल थे नसरुद्दीन शाह, जो कि गुडी गुडी कैरेक्टर था, एंड देन फारूक शेख द ट्विस्टेड वन. उस फिल्म में भी दीप्ति नवल थी. उसके बाद दीप्ति नवल कहती हैं कि काफ़ी फिल्म साथ करने के बाद बीच में ब्रेक आ गया, एंड दे बोथ वर वर्किंग इन देयर ओन डायरेक्शन. क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी, फारूक साहब ने बहुत सारा टीवी पे भी काम किया है, टेलीविजन पे उनके कई सीरियल्स वगैरह है. बट कमिंग बैक टू दीप्ति जी, दे फाइनली got back together in 2012 or 13. It was a movie called Listen Ameya. इस movie में फारूक साहब और दीप्ति जी ने middle age characters को निभाया है. दोनों देर उनके 50s में हैं और उनके spouses नहीं हैं, they are alone. सो कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, करीब आते हैं, दे इन्जॉय द कंपेनियनशिप. उनकी बेटी जो रोल निभाया है स्वरा भास्कर ने, शी कुडंट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कंपेनियनशिप एट दिस एज, एंड द होल थिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुली वोवन इन अ मूवी. सो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें लिसन अमेया. ब्यूटिफुल एक्टिंग बाय बोथ कैरेक्टर्स, दीप्ति नवल जी एंड फारूक शेख. दीप्ति नवल कहती है कि यूजुअली फारूक शेख वॉज अ प्रैंकस्टर, बहुत परेशान करते थे, खिंचाई करते थे, लेकिन वाइल दे वर डूइंग इन दिस लेसन अमेया इन 2013, शी फाउंड अ होल डिफरेंट फारूक शेख, अ मोर मैच्योर वन. उस समय दीप्ति जी शॉर्ट स्टोरीज लिख रही थी, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एंड वो बताती हैं कि वो सेट पर अपनी शॉर्ट स्टोरीज उनको पढ़ने को देती थी, एज ही वॉज अ वेरी एविड रीडर. और फारूक साहब पढ़कर उस पर अपनी टिप्पणी करते थे, कुछ करेक्शंस बताते थे. और दीप्ति जी कहती हैं शी रियली लाइक्ड दिस एक्सपीरियंस विद फारूक साहब, रीयूनाइटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स एंड स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. अब वक्त है आपको एक और गीत सुनवाने का, और इस गाने से लौटकर हम आपको बताएंगे कि फारूक साहब ने टीवी पर क्या क्या काम किया, और थिएटर में ऐसा वो कौन सा नाटक था जो 20 साल तक सुपर डुपर हिट रहा. सब बातें होंगी गाने के बाद.
ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा.
ये था 1982 की फिल्म साथ साथ से. बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत था कुलदीप सिंह का, आवाजें थीं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह जी की, पर्दे पर एक बार फिर दीप्ति नवल के साथ फारुक शेख, फिल्म साथ साथ में। इस गाने पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि दीप्ति नवल के साथ उन्होंने कैसे कैसे कहां कहां काम किया। शबाना आज़मी, जिनका जिक्र मैंने पहले ही किया था, वो इनकी बैचमेट थी। उनके साथ इन्होंने 3-4 मूवीज़ भी की, पर जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ वो था एक थिएट्रिकल प्ले तुम्हारी अमृता। ये जो नाटक था ये था दो लोगों के बीच लिखे हुए प्रेम पत्र, जो दो लोग बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे और 35 साल तक एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखी थी। वो चिट्ठियाँ पढ़ी जाती हैं सिर्फ पूरे शो में, सिर्फ यही है, टेबल चेयर पड़ी है, शबाना जी बैठी हैं, फारूक जी बैठे हैं और वो दोनों एक दूसरे के बैक एंड फोर्थ चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं। पर सोचिए क्या इन्होंने अपनी आवाज़ या पढ़ने में क्या जादू रखा होगा कि 1992 में पहली बार ये शो हुआ है और उसके बाद से 20 साल तक दुनिया भर के बड़े तमाम बड़े शहरों में ये शो हुआ और सुपर डुपर डुपर हिट रहा। शबाना जी बताती हैं कि एक बार न्यूजर्सी में ये शो होना था और जो उनका टैक्सी ड्राइवर था वो कहीं गलत टर्न ले गया और वो लोग वेन्यू पर ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट पहुँचे। लोग बहुत नाराज़ थे। तो जब पर्दा खुला तो फारूक साहब ने उनसे कहा, मैं आप लोगों की नाराज़गी समझता हूँ, पर जहाँ आपने इतना धैर्य रखा है आप नाटक देख लें और अगर आपको पसंद ना आए तो आप सबके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। एंड जब नाटक ख़त्म हुआ तो दे गॉट द स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द ऑडियंस। तो हम समझ सकते हैं कि नाटक कितना सफल होगा। 2013 में शबाना जी कहती हैं कि ये नाटक को आगरा में ताजमहल के बैकग्राउंड में दे परफॉर्म्ड इट, इट वाज ग्रैंड। एंड शबाना जी कहती हैं कि अब हम लोगों को ये फिनाले होना चाहिए और फारूक साहब ने कहा था कि अभी तो 20 साल और हम इस नाटक को कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे देखेंगे तुम्हारी अमृता तो वो वीडियो क्लिपिंग तो नहीं, पर हाँ शायद ऑडियो क्लिपिंग्स जो हैं वो आपको मिलेंगे और आपको आइडिया लग सकेगा कि ये नाटक कैसा था और उन लोगों ने किस तरह की परफॉर्मेंसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये तो था फारूक साहब के थिएटर से इस नाटक से जुड़ने की और इसके सफल होने की कहानी। उन्होंने TV पर भी बहुत काम किया तो उसका जिक्र करते हैं इस गाने के बाद। स्वीट सॉन्ग, ये था फिल्म नूरी से बोल थे नक्श लालपुरी के, संगीत था खयाम का, आवाज़ लता मंगेशकर की, पर्दे पर पूनम ढिल्लो और इस फिल्म के जो मेन किरदार थे वो थे फारूक शेख। हम इस गाने के पहले आपको बताने जा रहे थे कि काफ़ी लंबे समय तक फारूक साहब TV पर सक्रिय रहे। उन्होंने एक सीरियल किया श्रीकांत, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित था, वो DD1 पर आता था। फिर उन्होंने एक सीरियल किया चमत्कार, जो शायद मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे आता था, पर वो काफ़ी दिन चला। जी मंत्री जी, जो कि अडेप्टेशन था यस मिनिस्टर का, वो स्टार प्लस पे काफ़ी दिन तक आया। फिर इन्होंने एक TV शो होस्ट किया था जिसके तो कई सीज़न आए, जो जीना इसी का नाम है, जिसमें वो फिल्म सेलिब्रिटीज़ के, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेते थे और कहा जाता है कि जो इनका एक मजाकिया अंदाज़ था और प्रश्न पूछने का तरीका था वो उस कार्यक्रम की USP थी और उसके चलते वो कई सीज़न तक चला, जीना इसी का नाम है। तो इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने टीवी पर भी काम किया, कुछ काम इन्होंने रेडियो पर भी किया था। इसके साथ ही साथ टीवी, और ये 2008 में वापस फिल्म्स में आए। इन्होंने 2009 में एक फिल्म करी थी लाहौर, जिसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। फिर एक फिल्म आई थी क्लब 360, जिसमें कि फिल्म के तो रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फारूक साहब ने एक किरदार निभाया है जो एक पिता का किरदार है, जिसके यंग बच्चे की डेथ हो जाती है, एंड हाउ ही इज़ कोपिंग अप, कैसा डिप्रेशन होता है, एंड उनके उनके अभिनय की इस फिल्म में काफ़ी तारीफ है। फिल्म का नाम था क्लब 60। और इस तरह से एक्सीडेंट ऑन हिल रोड, वो भी एक मूवी आई थी। इस तरह से कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, पर सम मूवीज़ ही डिड टूवर्ड्स द एंड, एंड आई थिंक 2013 लिसन अमेया, जिसकी हमने पहले बात की। अब अगर बात करी जाए फारूक साहब की निजी ज़िंदगी के बारे में, तो वो खुद एक 5 समय की नमाज पढ़ने वाले खुदा परस्त मुसलमान थे, पर उन्होंने शादी की एक हिंदू लड़की रूपा जैन से, जो उन्हीं के साथ सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी। 9 साल की लंबी कोर्टशिप के बाद उनकी शादी हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, शाइस्ता शेख और सना शेख। फारूक साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ही नेक दिल थे और लोगों की मदद करने में बहुत यकीन रखते थे। उनके बारे में कई किस्से ऐसे मशहूर हैं जहाँ बिना किसी को बताए वो पैसे से, शरीर से, जिसकी जहाँ जो मदद लगती थी वो करते रहते थे, पर अपना नाम कहीं हो ऐसी उनको कोई ख्वाहिश नहीं रहती थी। उनको एक फिलान्थ्रोपिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। 28 दिसंबर 2013, फारूक साहब अपने परिवार के साथ घूमने दुबई गए थे और अचानक वहाँ दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। फारूक साहब कहते थे कि वो हमेशा ऊपर वाले से एक ही चीज़ मांगते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कभी किसी से सेवा ना करानी पड़े, और खुदा के बंदे की बात ऊपर वाले ने क्या सुनी। चलते फिरते, हंसते मुस्कुराते, एक पल में 65 वर्ष की आयु में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एज आई ऑलवेज से, कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी कला से हमारे दिलों में, इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये गीत था फिल्म गमन से, इसमें बोल थे मखदूम के, संगीत जयदेव का, आवाज़ छाया गांगुली। आज देसी जायका में हमने बातें की फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता फारूक शेख के बारे में। फारूक शेख, जिन्होंने ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि थिएटर और टीवी पर भी बहुत उम्दा काम किया। उनके व्यक्तित्व की सादगी, उनकी सरलता और उनका हंसमुख चेहरा हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में अंकित है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब पूजा को इजाज़त, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। टिल वी मीट अगेन, नमस्कार।